खुदावंद के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ जो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने यह भी फरमाया कि चोर नहीं आता चुराने बल्कि मार डालने और हलाक करने के लिए, मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। दुआए हम सब उस जिंदा खुदा खुदा के जुड़ चुके हैं और अपने आप को उसके जिंदगी बख्श कलाम को सुनने के लिए तैयार करें। आसमान और जमीन के खालक और मालिक, हम तेरे हजूर आते हैं और तेरा शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए। तेरा शुक्र करते हैं आज के मुबारक दिन के लिए जिस दिन खुदावंद यीशु नासरी तूने सलीब पर अपनी जान देकर कब्र में उतारा गया। और खुदावंद आज के दिन तो मुर्दों में से जी उठा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। आज हम जो कुछ भी तेरे कलाम में से सीखें हम सब की तरबियत और नसीहत का बायस बने और सारा जलाल तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले। सब कम होते जाए, तू बढ़ता जाए। तेरे ही प्यारे और जलाली नाम यीशु नाम में ये तुम मांगते हैं, आमीन। किसी को याद है कि पिछले एतवार हमने तीन बातों पर गौर की थी। अगर नहीं याद तो आए फिर उन बातों पर जरा गौर व फिक्र करें, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और पाक और हर दो तलवार से ज्यादा तेज है। इसलिए खुदा का बंदा पालूस रसूल 11वीं आयत में कहता है, हम 16वीं आयत तक पढ़ेंगे और आज मैं चाहूंगा कि हम ज्यादा से ज्यादा हवाला जात को पढ़ें, बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। इफिसियों 4:11 उसकी 11 आयत में लिखा है, और उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबशर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया ताकि मुकद्दस लोग कामल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक ना पहुंच जाएं, ताकि आगे को हम बच्चे ना रहें और ना और आदमियों की बाजगीरी और मकारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरें, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ पैवस्त होकर हर तरह से बढ़ते जाएं, जिससे सारा बदन हर एक जोड़ की मदद से पवस्त होकर और गंठ कर उस तासीर के मुआफिक जो बाकदर हर हिस्सा होती है अपने आप को बढ़ाता है, ताकि मोहब्बत में अपनी तरक्की करता जाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब की रहनमाई तरबियत सेहत और हौसला हो, आमीन। हमने पिछले हफ्ते तीन बातों को देखा था 12वीं आयत में कि जिस मकसद के लिए खुदा ने नबियों को रसूलों को मुबशरों को पादरियों को उस्तादों को मुकर्र किया। आप सबको याद होगा कि इस दौर में मुबशर की खिदमत पादरी की खिदमत और उस्ताद की खिदमत मौजूद है, क्योंकि जब से बाइबल मुकद्दस मुकम्मल हुई है ना अब ज़मीन पर कोई रसूल है जो कि रसालत का काम करे और ना ही ज़मीन पर अब कोई नबी है जो नबूवत करे। इसलिए अब ज़मीन पर मुबशर और चरवाहे यानी के पादरी की खिदमत और उस्ताद जिसे मौलम कहा गया है, जो खुदा के कलाम की गहरी बातों को तफसीलन बयान करते हैं, वो लोग मौजूद हैं और इन खदमात को खुदावंद यीशु मसीह का देने का और पालूस रसूल का बयान करने का मकसद क्या है, ताकि मुकद्दस लोग कामल बने। हमने पिछले हफ्तों में ये तीन बातें सीखी, लेकिन इन तीन बातों को मैं दोहराना चाहता हूँ क्योंकि सवाल पूछने पर बहुत से लोगों का जवाब खामोशी था, जो इस बात की तरफ इशारा है कि हमें याद नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम इसे याद रखें, क्योंकि खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चराग और राह के लिए रोशनी है। सो खुदा ने पादरी की खिदमत इसलिए दी है, मुबशर की खिदमत इसलिए दी है ताकि मुकद्दस लोग कामल बने, यानी कि कलीसिया कामलियत पुख्तगी की तरफ, रूहानियत की तरफ बढ़े, उस मैयार को सीखे, जाने, समझे जो खुदावन खुदा चाहता है कि कलीसिया में हो। जिसे दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि खुदावन यीशु मसीह चाहता है कि कलीसिया, जो कुदरत उनको बख्शी गई है, उस कुदरत के बारे में जाने और उस कुदरत में ज़िंदगी गुजारे जिसे रूहुल कुद्दस कहा गया है, ताकि जब हम उस कुदरत में ज़िंदगी गुजारेंगे तो कामल बनने का जो लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब है पुख्तगी हासिल करना, बालग होना। जैसे बच्चा बढ़ता है, जवान होता है, वैसे ही रूहानी जिंदगी में बढ़ना बढ़ना, समझ में जवान होना, खुदा के फहम और हिकमत की बातों में पुख्ता लम्हा ब लम्हा होते जाना। सो कामल का लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, इसके मायने पुख्तगी, दुरुस्तगी या बगूलत हासिल करना है, जिसे कह सकते हैं कि समझ में, सोच में, ख्याल में, बातचीत में जवानों जैसी अक्लमंदी की सोच रखना। जब ऐसा होगा तो नतीजा क्या निकलेगा? खिदमत गुजारी का काम किया जाएगा, खिदमत गुजारी का काम किया जाएगा, यानी कि मसीह का बदन तरक्की पाएगा। और खिदमत गुजारी के काम की हम झलक बाइबल मुकद्दस की इब्तदाई कलीसिया में देख सकते हैं। इसलिए खिदमत गुजारी, पहला कामल लोग बने, यानी कि कलीसिया पुख्तगी की तरफ बढ़े, दूसरी बात खिदमत गुजारी का काम किया जाए, और तीसरी बात क्या होगी जो फल की सूरत में नजर आएगी, वो है मसीह का बदन तरक्की पाएगा। तो इन तीन बातों को मैं चाहता हूं कि हम दोहराएं, इनमें से सीखें। सो खुदावन खुदा की पालूस के वसीला से यही ख्वाहिश है, और जो खादम कलीसिया से मोहब्बत, कलीसिया की फिक्र मंदी करता है, उसकी दुआ और ख्वाहिश और उसके कलाम को बयान करने का मकसद यही है कि मसीह का बदन पुख्तगी की तरफ बढ़े, मसीह के लोग बचकाना सोच ना रखें, जिसके बारे में मिसाल के तौर पर हम देख सकते हैं अब्रानियों। जब रबरानियों हम 5 बाब देखते हैं तो वहां पर खुदावंद खुदा का कलाम हमें यूं फरमाता है, रबरानियों 5 बाब उसके 11वीं आयत में यूं लिखा है, इसके बारे में हमें बहुत सी बातें कहना है जिनका समझना मुश्किल है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनते इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो, वक्त के ख्याल से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए, मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तदाई असूल तुम्हें फिर सिखाए और सख्त गजा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ेगी, क्योंकि दूध पीते हुए को रासबाजी के कलाम का तजर्बा नहीं होता, इसलिए कि वो बच्चा है, और सख्त गजा पूरी उम्र वालों के लिए होती है जिनके जो इस काम कर जो इस काम को करते करते नेक व बद में इम्तियाज करने के लिए तेज हो गए हैं। तो यहाँ पर खुदा का कलाम अब्रानियों का लिखने वाला अब्रानियों को, यहूदियों को, उस दौर के ईमानदारों को कहता है कि तुम्हें वक्त के लिहाज से उस्ताद यानी के समझदार होने की होना चाहिए था, लेकिन अब फिर ज़रूरत पड़ रही है कि तुम्हें वो तमाम इब्तदाई बातें सिखाई जाए जो तुमने बार बार सुनी है। एक पादरी का मकसद यही है कि कलीसिया क्या बने, कामलियत की तरफ, पुख्तगी की तरफ बढ़े। पुख्तगी किस तरह आएगी, कामलियत किस तरह होगी, पुख्तगी की जिंदगी हम किस तरह हासिल कर सकते हैं, मसीही जिंदगी दुखों से भरी हुई जिंदगी है, इसलिए पुख्तगी की जिंदगी, जैसे हम आम तौर पर एक पौधे को देखते हैं अगर अपने घर में लगाते हैं तो खा वो किसी फूल का पौधा है या फिर किसी फल का पौधा, जब दरख्त बनता है तो उस पर लगता है तो उसे एक अरसा लगता है कि उस पर फल आए। मिसाल के तौर पर जब हम गंदम को देखते हैं तो गंदम को जब बोया जाता है तो गंदम तपश से पकती है, सूरज की गर्मी के साथ जब वो पकती है तो जब वो दाना जमीन में गिर के मर जाता है तो तब वो फल लाता है। वैसे ही मसीही जिंदगी, मसीही जिंदगी दर्द के बगैर परवान नहीं चढ़ती। अगर मसीही जिंदगी में हम पुख्तगी के अमल को, फल को देखना चाहते हैं तो इसमें दर्द लगेगा, इसमें मुसीबतों का, दुखों का सामना होगा, इसलिए क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है। इस हवाले को जो हमने देखा, अब्रानियों के खत में खुदा का कलाम यही फरमाता है उन तमाम लोगों को जो उस दौर में मौजूद थे कि तुम्हें वक्त के लिहाज से समझदार उस्ताद, खुदा के कलाम के तजर्बाकार होना चाहिए था, लेकिन तुम अब भी बच्चों की तरह क्या हो, दूध के मुश्ताक हो। दूध की जहाँ पर यह मिसाल दी गई है कि बच्चा दूध पी सकता है, अगर दूध पीते हुए बच्चे को हम गोश्त दे दें तो उसे गोश्त हजम नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि तुम्हें बचकाना सोच, बच्चों की जैसी तबीयत है, इसलिए तुम फिर दोबारा क्या करने की ज़रूरत है, नरम ग़िज़ा खाने की ज़रूरत है। ये उस दौर की कलीसिया का हाल था। अब्रानियों के जो लोग थे, अब्रानियों की जो हालत थी, उनको लिखते हुए खुदा का नामालूम बंदा ये बातें कहता है। हमें हमें पुख्तगी की ज़िंदगी में दुख, तकलीफ, मुसीबत का सामना होगा, इसलिए मेरे साथ निकालें दूसरा तिमोथियस 3 बाप, उसकी दूसरा तिमोथियस 3 बाप उसकी 16 और 17 आयत। यहाँ पर खुदा का बंदा पालूस रसूल यही बात बयान करता है कि खुदा ने अपना कलाम हमें इसलिए दिया है ताकि हम पुख्तगी हासिल करें, ताकि हम बालग बने, क्योंकि जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं ये दौर बेअकली का, नासमझी का, दुनिया की सोच में, दुनिया के सोच विचार में लोग कहते हैं कि वो बहुत समझदार हैं, लेकिन खुदा के कलाम के आईना में वो बिल्कुल ही बेसमझी का मुजाहरा करते हैं। इसलिए दूसरा तिमोथियस 3 बाप उसकी 16 आयत में खुदावन खुदा पालूस के वसीला से कहता है, हर एक सहीफा जो खुदा के अलहाम से है, यानी कि खुदा के मुंह से निकली हुई हर एक बात जो खुदा का सांस, खुदा का दम, खुदा की सांस है, किस लिए बख्शा गया है, तालीम के लिए। तालीम यानी कि हम तालीम हासिल करें कि बाइबल मुकद्दस में खुदावन खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है, ताकि जब हम तालीम हासिल करेंगे तो हम दूसरों को तालीम देने वाले बनेंगे। आप सबको याद होगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक तमसील कही थी लूका की इंजील उसके 6 बाप की 39वीं आयत में, कि क्या अगर अंधा अंधे को राह दिखाएगा तो वो दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। ऐसा ही होगा ना जी, अगर अंधा अंधे को राह बताना शुरू कर दे तो दोनों क्या घर में पहुंच जाएंगे, नहीं, दोनों क्या होंगे, अपने रास्ते को ढूंढ नहीं पाएंगे। और यीशु मसीह के अल्फाज है कि अंधा अंधे को राह दिखाएगा तो दोनों गड़े में गिरेंगे। वैसे ही यहाँ पर लिखा है कि खुदा ने अपना कलाम हमें इसलिए दिया है ताकि हम तालीम हासिल करें। जब हमें खुदा के कलाम की सच्चाइयों की समझ होगी तो हम दूसरों को सिखाएंगे। ऐसा ही होगा। दूसरी बात, और अल्जाम। अल्जाम से मुराद यानी कि हमें तरबियत, हमें तंबी करेगा। खुदा का कलाम हमें हर वो बात से तंबी, हर बात पर तंबी करता है जो खुदा की नज़र में नापाकी, खुदा की नज़र में खुदा जैसी सोच नहीं है। सो खुदा का कलाम हमें अल्ज़ाम देता है, हमारी क्या करता है, तंबी करता है, जिसे कह सकते हैं मलामत करना। जब आपके बच्चे या बहन भाई या कोई रिश्तेदार गलत रास्ते पर जाता है तो क्या आप करते हैं? उसको तंबी करते हैं, मलामत करते हैं। खुदा का कलाम हमें भी तंबी करेगा, तंबी इसलिए करेगा ताकि हम पुख्तगी हासिल करें। और तीसरी बात, और सलाह। सलाह से मुराद हमारी दुरुस्तगी करेगा, सलाहकारी करेगा। अगर हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो खुदा हमारी दुरुस्तगी करेगा, हमें सही रास्ता दिखाएगा। और खुदा के कलाम में लिखा है कि उसका कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। रोशनी क्या बख्शती है? हमें नूर बख्शती है, और नूर के वसीला से हम अपना रास्ता दुरुस्त ढूंढते हैं। सो खुदा का कलाम हमारी तरबियत करता है, हमारी सलाहकारी करता है। और फिर लिखा है, और रास्तबाजी में हमें ये पहचान बख्शता है कि रास्तबाजी और नारास्ती क्या है। खुदाई और नादीदा यानी कि अबलीसी क्या है, शैतानियत के बारे में और रूहानियत के बारे में तालीम देता है। रास्तबाजी की यानी कि हमें रास्तबाजी का लकब मिलते हुए हम रास्तबाजी यानी दुरुस्तगी रही सब कुछ जो दुरुस्त और सादकुल कौल है उसे करते हैं। और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए, तरबियत का लफ्ज यानी कि हमारी क्या करता है, रहनुमाई करता है, हमारी सलाहकारी करता है, हमें समझ बूझ देता है कि हमें सही तरीके से चलने की जरूरत है। सो रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदा मंद है, फायदा मंद भी है। किस लिए? ताके खुदा ने हमें तालीम दी, हमारी तरबियत और नसीहत की, हमारी सलाहकारी की, हमें रास्तबाज ठहराया और हमारी दुरुस्तगी करता है, ताके क्या हो, मर्दे खुदा कामल बने। 17वीं आयत में लिखा है, मर्दे खुदा कामल बने। मर्दे खुदा से कामल बनने से मुराद यानी कि हर एक खुदा का बंदा और बंदी क्या हो जाए, पुख्ता हो जाए, बिल्कुल दुरुस्त हो जाए, समझ में, सोच में, हिकमत में, अपनी जिंदगी में रूहानी तौर पर पुख्तगी की उस राह पर गामजन हो जाए। तो मर्दे खुदा कामल बने और हर एक नेक काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। पालूस रसूल ने क्या कहा? ताकि मुकद्दस लोग कामल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए। यहाँ पर पालूस कहता है हर एक नेक काम के लिए। जब हमें समझ होगी, जब हमारी तरबियत होगी, जब हमें तंबी की जाएगी, जब हमारी सलाहकारी, हमारी दुरुस्तगी की जाएगी, तो हम रास्तबाजी में तरबियत हासिल करके क्या करेंगे, उन तमाम कामों को जो खुदा चाहता है, पुख्तगी के साथ, दुरुस्तगी के साथ, बिल्कुल सही तौर पर, बिल्कुल सही तरीके से। जैसे दर्जी अपने कपड़े को जब वो काटता है तो वो दुरुस्त तरीके से काटता है, वैसे ही हम दुरुस्तगी से क्या करने वाले बनेंगे, हर एक नेक काम को अंजाम देने वाले बनेंगे। एक मसीही की जिंदगी में दुखों के वसीला से बढ़ोती, पुख्तगी या दुरुस्तगी आती है। इसके लिए मैं चाहता हूं चंद एक मिसालें देखें, मेरे साथ देखें खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी। अब्रानियों दो बाप उसकी जब हम देखते हैं 6 आयत से 11वीं आयत तक, तो हम सिर्फ 9-10वीं आयत को पढ़ेंगे। इसके पीछे जो सोच है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह को वो दर्जा मिला, वो मैयार मिला जो बहुत ही आला और बेहतरीन है। तो 10वीं आयत में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि जिसके लिए सब चीज़ें हैं और जिसके वसीला से सब चीज़ें हैं। आप सबको याद होगा कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था, और सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और कोई भी चीज़ उसके बगैर पैदा ना हुई। सो खुदावंद यीशु मसीह ने सब चीज़ों को बनाया और सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई। और लिखा है उसी को यही मुनासिब था कि जब बहुत से बेटों को जलाल में दाखिल करे तो उनकी निजात के बानी को दुखों के जरिया से कामल कर ले। खुदावंद यीशु मसीह को दुखों के वसीला से उस पुख्तगी के मेयार तक क्या किया गया, पहुंचाया गया। यीशु मसीह ने दुखों को सह सह कर पुख्तगी हासिल की। आप सबको याद होगा लूका की इंजील उसके 2 बाप में लिखा हुआ है 50वीं आयत में कि यीशु मसीह कद्दोकामद में और इंसान और खुदा की नज़र में बढ़ता गया, पुख्तगी हासिल करता गया, कामलियत की तरफ बढ़ता गया। बेशक खुदावंद यीशु मसीह मुकम्मल तौर पर कामल खुदा कामल इंसान था, उसमें कोई कमी नहीं पाई जाती थी, लेकिन इंसानों की नज़र में वो कामलियत में पुख्तगी में हर तरह की कमियों को क्या करता हुआ, अभूर करता हुआ आगे ही आगे बढ़ता गया। सो मसीही जिंदगी में मसीहियों के लिए बहुत दफा दुख, मुसीबत, परेशानी, और ये दुख किस तरह हो सकते हैं, रुपए पैसे की कमी, बीमारी, या फिर कह सकते हैं मसीही ईमान की आजमाइश, या फिर कह सकते हैं रिश्तेदारों से बहुत दफा मलामत उठाना, दुख उठाना, बुरा भला कहा जाना, और बहुत दफा ईमानदार छोड़कर अपनी राह की तरफ हो जाते हैं और ईमानदारों को बुरा भला कहते हैं। तो इन दुखों के वसीला से हम क्या करते हैं, रूहानी तौर पर हमारी जिंदगी में, हमारी मसीही जिंदगी में पट्ठे मजबूत होते हैं, हमारे पट्ठे जिनसे कहते हैं कि मसल, जब वो मजबूत होते हैं तो हम ज्यादा वजन उठा सकते हैं। वैसे ही रूहानी तौर पर हमारे रूहानी पट्ठे मजबूत होते हैं तो हम पुख्तगी की तरफ बढ़ते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह दुखों के वसीला से क्या किया गया, कामल कर लिया। यीशु मसीह दुखों के वसीला से निजात के बानी को दुखों के जरिया कामल कर लिया, ताकि वो अपने हर एक बंदी बंदे को क्या करे, पाक करे। एक और हवाला मेरे साथ देखें, अब्रानियों 5 बाप उसकी 7वीं आयत, 7वीं आयत से 10वीं आयत तक देखते हैं तो क्या लिखा है। उसने अपने बशरियत के दिनों में, किसने, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जमीनी जिंदगी में बशरियत यानी कि इंसान होते हुए जब वो कामिल इंसान था जिंदगी जमीन पर गुजार रहा था, उसने अपनी बशरियत के दिनों में रो रो जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। और 8वीं आयत में लिखा है, बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर फरमा बरदारी सीखी। अगर मसीही आज किसी दुख मुसीबत में से गुजरते हैं तो वो बहुत दफा कहते हैं कि क्यों हमारी जिंदगी में दुख आया। यीशु मसीह ने फरमा बरदारी, यीशु मसीह ने कामलियत की जिंदगी को गुजारा तो दुखों को सह सह कर। और लिखा है 9वीं आयत में, और कामल बनकर, क्या बनकर, कामल बनकर। यीशु मसीह कामल था लेकिन उसने कामलियत की जिंदगी बसर की। कामल बनकर अपने सब फरमा बरदारों के लिए अपनी अबदी निजात का बायस हुआ। यीशु मसीह ने अपनी मसीही जमीनी जिंदगी में दुख उठाए, मुसीबतें उठाई, गालियां खाई, बहुत बुरा भला कहा गया, और क्या किया गया, उसकी जिंदगी खुदा के जलाल और आदमियों के सामने नूर ही नूर बनती गई। तो अगर हमारी जिंदगी में दुख, मुसीबत, परेशानी, किसी किस्म की कोई तकलीफ आती है, तो वो बहुत दफा कह सकते हैं कि हमारे ईमान की बढ़ोतरी के लिए है, हमारे ईमान के पट्टे मजबूत हों, ताकि हम अपनी सलीब का बोझ उठाकर यीशु मसीह के पीछे चलने वाले बने। इसलिए मसीह खुदावन की जिंदगी के दुख हमारे लिए एक मिसाल हैं, और ये बहुत ही आला मिसाल है। इसमें से हम सब सीख सकते हैं। लूका की इंजील मेरे साथ देखें, छठा बाप उसकी 40वीं आयत। लूका की इंजील छठा बाप उसकी 40वीं आयत। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मुबारक लबों से ये सच कहा। 40वीं आयत में लिखा है, शकीर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता, बल्कि हर एक जब कामल हो जाए, कामल हो, तो अपने उस्ताद जैसा होगा। इसका मतलब अभी आपको बताता हूँ। यीशु मसीह का कहने का मतलब है कि शागिर्द अपने उस्ताद से कभी भी बड़ा नहीं होता, कभी भी उससे बेहतरीन दर्जा हासिल नहीं करता, लेकिन जब वो कामल हो जाए, यानी कि पुख्ता हो जाए, ऐसा तजर्बाकार शागिर्द हो जाए जिसे मुकम्मल समझ हो, वो अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर बिल्कुल दुरुस्त तरीके से चलना, सही तरीके से उसके नक्शे कदम पर चले, तो वो अपने उस्ताद से बढ़ता नहीं, बल्कि उस जैसा हो जाता है। बहुत दफा कहते हैं ना किसी तबला नवाज को कि इसके इसके बजाने का ढंग इसके उस्ताद जैसा है। बहुत दफा किसी तालिब इलम को कहते हैं कि इसके समझाने का तरीका कार बिल्कुल इसके उस्ताद जैसा है। और बहुत दफा किसी रंग साज को कहते हैं कि इसके हाथ की सफाई बिल्कुल वैसी है जैसे इसके उस्ताद की थी। और बहुत दफा इस तरह भी कहा जाता है कि अगर कोई बहन सिलाई का काम करती है, तो वो कहते हैं कि इसके हाथ की सफाई इसकी उस्तानी से या उस्ताद से मिलती जुलती है। तो वो शगिर्द या क्या कह सकते हैं कि तालिब इलम अपने उस्ताद से बड़ा नहीं हो जाता, बल्कि उस जैसा हो जाता है। तो जब हम यीशु मसीह की तरह अपनी मसीही जिंदगी में दुख उठाएंगे, तो हम कामलियत की तरफ, पुख्तगी की तरफ बढ़ेंगे, और जब पुख्तगी की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, खिदमत गुजारी का काम किया जाएगा। खिदमत गुजारी का काम क्या है, इसकी सादा सी तस्वीर आप सब के सामने पेश करना चाहता हूँ कि जब खिदमत गुजारी का काम किया जाएगा, तो मसीह का बदन तरक्की पाएगा। मसीह का बदन क्या, कि जो कोई कलीसिया में ये काम करेगा तो कलीसिया बरकत पाएगी। हम बहुत दफा यही समझते हैं कि जो जी बहू हैं, जो पादरी हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी है कि वो आकर हमको कहें कि गिरजा घर में आए। अगर आप पुख्तगी के राह पर चल रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को साथ लेकर आएं, कमजोरों का हौसला बढ़ाएं, भटके हुओं को सीधी राह पर लाएं, जो तारीकी में बैठे हुए उन पर रूह खुदावंद के कलाम की रोशनी का पैगाम जाहिर करें। इसलिए इसलिए ये कलाम सुनाने का जो मकसद यही है कि आप सीख कर, ये नहीं कि पादरी साहब ही जाकर लोगों को बुलाएं, ये नहीं कि पादरी साहब ही जाकर सब कुछ करें। अगर सिर्फ पादरी साहब ने ही सब कुछ करना है, तो फिर बेहतर है कि हम अपने अपने घरों में बैठकर किसी और काम की तरफ मुतवज्जा हों। मसीह का बदन होते हुए पादरी का काम है आपको कलाम सुनाना, सिखाना, आपका काम है उस कलाम को अपनी जिंदगी में जगह देना, और क्या होगा, खिदमत गुजारी का काम किया जाएगा और मसीह का बदन तरक्की पाएगा। खिदमत गुजारी का काम, इब्तदाई कलीसिया क्या करती थी, इमाल दो बाप, इमाल दो बाप उसकी 46वीं आयत में लिखा है कि ये इब्तदाई कलीसिया का क्या था, रोजमर्रा का काम था, जो आज की कलीसियाओं में नजर नहीं आ रहा। आज पादरी साहबान कलाम काम लेकिन रुपया पैसा ज्यादा इकट्ठा करने की तरफ मुतवज्जा है। आज नौजवान दुआ की बजाय बद दुआओं या बुरी बातों की तरफ गामजन है। इसलिए इमाल 2 बाप उसकी 46वीं आयत में लिखा है, ये इब्तदाई कलीसिया की जिंदगी में क्या है, खिदमत गुजारी का काम। आपके लिए 44वीं आयत में पढ़ता हूँ, आपके लिए 44वीं आयत में लिखा है, और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते और सब चीजों में शरीक थे। ईमान किस तरह लाए? किसी ना किसी ने जाकर उनको ईमान के बारे में सुनाया। हमें दूसरों को अपने ईमान के बारे में बताने की जरूरत है ताकि वो ईमान के बारे में जाने। और 44-45वीं आयत में लिखा है, और अपने जायदाद और असबाब बेच बेच कर हर एक की जरूरियात के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे। हमें कलीसिया में एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है, ये नहीं कि जैसे बहुत दफा रवैया होता है कि हम आयत को उल्टा पढ़ते हैं और कहते हैं कि लेना देने से मुबारक है। लेकिन सही आयत क्या है? देना लेने से मुबारक है। बहुत दफा हम लेना पसंद करते हैं, देना पसंद नहीं करते। चाहे वो हमारा वक्त हो, चाहे वो हमारी तवज्जो हो, चाहे वो 1 घंटा हो खुदा के लिए कलाम पढ़ने का, या फिर वो हदिया शुक्रगुजारी हो। क्यों कलीसियाओं में बेचैनी है, लड़ाई है, फसाद है, बीमारी है, अबतरी है, घरों में जुदाई है, लड़ाई झगड़े हैं? क्यों? क्योंकि खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में जगह नहीं देते। इसलिए आगे क्या लिखा है 46वीं आयत में, कलीसिया उस दौर में क्या करती थी, और हर रोज एक दिल होकर, यहां पर क्या लिखा है, और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते थे, और घरों में रोटी तोड़कर खुशी से और सादा दिली से खाना खाया करते थे। हर रोज एक दिल होकर। बहुत दफा ईमानदार जब दुआ के लिए इकट्ठे होते हैं तो उनके आपस में लड़ाई पाई जाती है, वो गिरजाघर में भी लड़ाई रख कर बैठते हैं। इसीलिए घरों में बरकत नहीं है, इसीलिए मसीही जिंदगियों में मसीह का बदन तरक्की नहीं पा रहा। तो हमें इब्तदाई कलीसिया से सीखने की जरूरत है। हम चाहे मुट्ठी भर लोग हैं, आप तारीख को बदल सकते हैं। और तारीख किस तरह बदलेगी? जब आप और मैं अपने आप को बदलेंगे। हमें दुआ करने की जरूरत है, हमें एक दिल होने की जरूरत है, हमें जमा होने की जरूरत है, और ये शुरू होगा आपसे, ये शुरू होगा आपसे। और हम में से किसी ना किसी को या सबको पहल करने की जरूरत है। और वो क्या करते थे? खुदा की हम्द करते थे और सब लोगों को अजीज रखते थे, और जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज उनमें मिला देता था। हमें निजात का पैगाम दूसरों तक पहुंचाने की जरूरत है। बहुत दफा हम शर्माते हुए ये नहीं कहते, ओ भाई, ओ बहन, ओ चाचा, ओ भाजी, आप बुत परस्ती में मुबतला हैं, ये खुदा की नज़र में गुनाह है, खुदा का कलाम इसके बारे में तालीम देता है, हम इसके बारे में कहते ही नहीं। अगर हम सच को सच नहीं कहेंगे तो फिर किस किस्म की जिंदगी हम गुजार रहे हैं? इसलिए हमें इब्तदाई कलीसिया से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तो मेरा काम है आप तक खुदा का कलाम पहुंचाना ताकि आप कामल बने, पुख्तगी की तरफ बढ़ें, ताकि खिदमत गुजारी का काम किया जाए। बहनों को, भाइयों को जरूरत है कोई दिन चुनाव करने की जिसमें वो बैठ कर दुआ करें, खाने पीने की चीजों को एक दूसरों के साथ बांटें और मिलकर रफाकत करें। और जब ऐसा होगा तो याद रखें कि खिदमत गुजारी का काम किया जाएगा और खुदावंद यीशु मसीह का नाम इज्जत और जलाल पाएगा और जिंदगियां बदलेंगी। और अगर हमारी हालत जैसा कि आज मौजूदा दौर में है, इबादत की और उसके बाद आप कौन और मैं कौन, तो फिर ये मसीही जिंदगी नहीं है। हम में से सबको इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये ज़िंदगी एक ही बार हम सबको मिली है और इस ज़िंदगी में दुख, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी, बीमारियां, उतार चढ़ाव, कमजोरियां, नुकसान, कामयाबियां इसी ज़मीन पर रहते हुए एक ही दफ़ा होगी। जब हम आसमान पर चले जाएंगे, वहां पर ना रोना होगा, ना दांतों का पीसना होगा, ना मौत होगी, ना जुदाई होगी, ना भूख होगी, ना परेशानी होगी, ना किसी बात का फिक्र, ना डर, ना पानी की कमी, ना बिजली के बिल का कोई खौफ। इस जमीन पर, जैसे मैंने कहा कि अगर हम पुख्तगी हासिल करना चाहते हैं तो पुख्तगी के अमल में दर्द लाजमी है। मसीही पुख्तगी की ज़िंदगी गुजारने में दुखों का आना ज़रूरी है और ये दुख हम सब सह सकते हैं, क्योंकि पालूस रसूल फिलिपियों 4:13 आयत में कहता है कि मैं अपने ताकत बख्शने वाले में सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियों 4:13 आयत में वो इस बात को वाज़ह तौर पर कह देता है, सादा तौर पर कहता है, मैंने भूख में, परेशानी में, बदहाली में, बारिश में, तूफान में, कैदखानों में, हर तरह की हालतों में हर तरह से राजी रहना सीख लिया। और इसीलिए कहता है, जो मुझे ताकत बख्शता है मैं अपने ताकत बख्शने वाले में सब कुछ कर सकता हूँ। तो सवाल ये है कि आज हम अपने ताकत बख्शने वाले में सब कुछ कर सकते हैं या नहीं, या फिर हम जब उसकी ताकत को इस्तेमाल करने का वक्त आता है तो उसे भूल जाते हैं। तो खुदावंद का कलाम कहता है, ताकि मुकद्दस लोग कामल बने। आपको पुख्तगी की तरफ जाने की जरूरत है ताकि खिदमत गुजारी का काम किया जाए। बहनों को, भाइयों को अलहदा अलहदा कोई ना कोई दिन मुकर करने की ज़रूरत है, जिसमें इबादत, जिसमें रोज़ा, जिसमें रफाकत रखने की ज़रूरत है। ना कि सिर्फ 40 दिनों के रोज़े के इंतज़ार करें। खुदा यीशु मसीह ने कहा, जब तू रोज़ा रखे, एतवार का दिन छोड़कर हम जब कभी भी चाहे रोज़ा रख सकते हैं, सर्दियों में, पतझड़ में, खजा में, बहार में, जब तू रोज़ा रखे। तो आए हम खुदावंद के हुजूर झुके और इस कामलियत के सफ़र में खुदावंद से कहें कि खुदा हमें कुव्वत और ताकत दे ताकि हम खिदमत गुजारी का काम करें, जैसे मरियम ने किया, जैसे मार्था ने किया, जैसे सलोमी ने किया, जैसे प्रसिकला और अकुला ने किया, जैसे नेओमी ने किया, जैसे रूत ने किया, जैसे अज़रा ने किया, जैसे और दूसरी बहुत सी औरतों ने किया, और मर्दों और भाइयों के लिए जैसे पालूस ने किया, जैसे दाऊद ने खिदमत का काम किया, जैसे मूसा ने खिदमत का काम किया, जैसे छोटे छोटे बच्चों ने अपने आप को खुदावंद के लिए पेश किया ताकि मसीह का बदन तरक्की पाए। खुदा बाप, अरवाला की कलीसिया के लिए तरक्की चाहता हूँ खुदावंद, रूहानी तौर पर सब तरक्की हासिल करें और बहुत से नए लोग तेरे मजमा में शामिल हों। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सारे उन बहानों को, सारे खुदावंद खुदा उन बातों को जो रोकती हैं, जो खुदावंद खुदा सुस्ती, लापरवाही, लाचारी का बायस बनती हैं, उन सबको दूर कर। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।